ஓ ஓ ஓ ஆதிகுரு சர்வஜ்ஞ பகவான் சங்கராச்சாரியஜி துவாரா விரச்சித் வேதாந்த டிண்டிமா இஸ் ஸ்தோத்திரக்கே ஆதார் பர் இஸ் பிரகரணக்கே ஆதார் பர் பிராத்தகாலீன் பிரவச்சன் கே வேதாந்த விசார் சல் ரஹா ஹை. அபியாஸ் கே லியே 53வா ஸ்லோக் ஹோகா. தேஹாதி பஞ்ச கோஷஸ்தா யா ப்ரீதிரனுபூயதே ஸா ப்ரீதிராத்மா கூடஸ்த இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. வ்யோமாதி பஞ்சபூதஸ்தா யா சத்தா வாசதே நிர்ணாம் ஸா சத்தா பரமம் ப்ரஹ்ம இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. வ்யோமாதி பஞ்சபூதஸ்தா யா சிதேகானுபூயதே ஸா சிதேவ பரம் ப்ரஹ்ம இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. வ்யோமாதி பஞ்சபூதஸ்தா யா ப்ரீதிரனுபூயதே ஸா ப்ரீதிரேவ ப்ரஹ்ம ஸ்யாத் இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. தேஹாதி கோஷகா சத்தா யா ஸா வ்யோமாதி பூதகா மானா பாவான் தத் வேத இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. தேஹாதி கோஷகா ஸ்ஃபூர்திஹி யா ஸா வ்யோமாதி பூதகா மானா பாவான் தத் வேத இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. தேஹாதி கோஷகா ப்ரீதி யா ஸா வ்யோமாதி பூதகா மானா பாவான் தத் வேத இதி வேதாந்த டிண்டிமஹ. मनन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है ये. मुमुक्षुओं को इन्हीं युक्तियों से मनन करना चाहिए. यहां युक्तियों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है. युक्ति यह है देहादि पंचकोशस्था देह है आदि देह शब्द से अन्नमय कोश। पंचकोशस्था, पंचकोशों में स्थित, पंचकोशों में अनुभव होने वाले वस्तु, जैसे फूल को जब हम सूंघते हैं तो सुगंधि का अनुभव करते हैं, तो हम ये निश्चय कर लेते हैं कि सुगंध पुष्पस्थ है, पुष्पस्थ। कौन से सुगंध का अनुभव करते हैं? पुष्पस्थ, पुष्प में रहने वाला सुगंध, पुष्पस्थ। ग्राण इंद्रिय से हम अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से अन्नमय कोशस्थ, अन्नमय कोश सप्त धातु का बना हुआ है, उसमें रहकर रहने वाला या प्रीति अन्नमय कोश के प्रति हमारी जो प्रीति है, प्रीति का तो अनुभव करते हैं। प्रीति माने प्रेम, आनंद, सुख। प्रीति शब्द का ये पर्यायवाची है, सुख बोलो, आनंद बोलो, प्रेम बोलो, अनुभूयते, अनुभव तो कर ही रहे। इसी तरह दस अवयवों से बना हुआ प्राणमय कोश, पांच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, दस अवयवों से बना हुआ एक प्राणमय कोश। वह भी हमें प्रिय है, उस आनंदमय माने प्राणमय कोश में भी हमारी प्रीति है। प्राण न रहे ये हम नहीं चाहते, कर्मेंद्रियां न रहे ये हम नहीं चाहते, कर्मेंद्रियों में हमारी जो प्रीति है, प्राणों में हमारी जो प्रीति है, लागणी है गुजराती में, वो प्रीति, वो सुख, वो आनंद, इसी प्रकार से चार छह अवयवों से मनोमय कोश बना है। पांच ज्ञान इंद्रियां और मन, छह अवयवों से बना हुआ मनोमय कोश, उस कोश के प्रति हमारी जो प्रीति है, प्रेम है, लागणी है, आनंद है, सुख बुद्धि है, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा मन न रहे, हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारी ज्ञान इंद्रियां न रहे, पांचों ज्ञान इंद्रिय और मन के प्रति हमारी जो प्रीति है, आखिर उसमें प्रीति है इसलिए ना हम लोग उसको चाहते हैं, आखिर उसमें सुख है, उसमें आनंद है, उसमें प्रियता है, इसलिए हम उसको चाहते हैं। इसी प्रकार के सेम छह अवयवों से बना हुआ विज्ञानमय कोश है, पांच ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि, तो मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मनमय कोष में मन प्रधान है, संकल्प विकल्पात्मक। विज्ञानमय कोष में बुद्धि प्रधान है, निश्चयात्मक। बाकी पांच ज्ञानेन्द्रियां दोनों में बराबर हैं। इसी के चलते विज्ञानमय कोष और मनोमय कोष में अंतर है, अन्यथा अंतर का कोई और दूसरा आधार नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बुद्धि नाश हो, बुद्धि के प्रति हमारी प्रीति है, प्रेम है, लगनी है, आसक्ति है, सुख है। इसी तरह आनंदमय कोष तीन अवयवों से युक्त आनंदमय कोष, प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति और प्रमोद वृत्ति, ये तीन वृत्ति से युक्त, तीन वृत्तियात्मक आनंदमय कोष है। और आनंदमय कोष की भी हमें प्रीति है, आसक्ति है, वहां पर भी आनंद की अनुभूति करते हैं। हम पांचों कोषों में यानी तीन देह में अर्थात पांच कोषों में जहां पर भी हम प्रीति का, प्रेम का, आनंद का अनुभव करते हैं। अब ये विचारणीय विषय है, कोष आए कहां से? तो कोष तो जिससे बने हैं वहीं से आए। कोष आए कहां से? पांच कोष आए कहां से? जिससे बने हैं उसी से आए हैं। अन्नमय कोष स्थूल महाभूत से आया है, प्राणमय मनोमय विज्ञान कोष मय कोष सूक्ष्म महाभूतों से आए हैं, आनंदमय कोष कारणभूत से आया है, कारण माने अविद्या से आया है। तो कोष ये कोषों में भूत धर्म हैं, भूत कार्यता होने से ये सब भौतिक है। भौतिकत्वम अतिस्फुटम, स्पष्ट दिख रहा है कि ये सब भौतिक हैं। पंचदशी में आप लोगों ने स्वाध्याय में ये बात पढ़ चुके हो। इन सब में भौतिकता बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। अब इसमें जो प्रीति है कहां से आया? वो आनंद है, प्रीति है, प्रेम है, सुख है, वो आया कहां से? तो भूत कार्य तो हो नहीं सकता है प्रीति, तो वो आया आत्मा अर्थात ब्रह्म से, कूटस्थ से। तो पांचों कोषों में जो प्रीति है वह समान अन्वय है प्रीति का, सुख का, आनंद का, समान अन्वय है। अन्नमय कोष में भी प्रीति है, उसका अन्वय है। प्राणमय कोष में भी प्रीति है, प्रेम का, आनंद का अन्वय है, लेकिन अन्नमय कोष का व्यतिरेक है। प्राणमय कोष में अन्नमय कोष नहीं है, लेकिन जो अन्नमय कोष में प्रीति है वही प्रीति प्राणमय कोष में है, तो प्रीति का अन्वय हो गया। अब इसी तरह मनोमय कोष में अन्नमय कोष और प्राणमय कोष दोनों का व्यतिरेक है। लेकिन प्रीति का अन्वय है। विज्ञानमय कोष में भी व्यतिरेक है, मन का व्यतिरेक है विज्ञानमय कोष में, प्रीति का अन्वय है। आनंदमय कोष में अन्य चार कोषों का, चारों कोषों का व्यतिरेक है, प्रीति का अन्वय है। अन्नमय कोष में जो आनंद है वही आनंद है सुषुप्ति, आनंदमय कोष में है। और आनंदमय कोष में जो आनंद है वही आनंद इस अन्नमय कोष में है। आनंदमय कोष में आनंद, प्रीति, सुख ये सभी कोषों में समान रूप से रहने के कारण प्रीति का सर्वत्र अन्वय है। अब ये कोषों में जो प्रीति है दिख रहा है वो कहां से आया? जैसे मैंने उदाहरण दिया, सुगंध पुष्प में रहता है, पुष्पस्थ सुगंध हम ग्राण इंद्रिय से ग्रहण करते हैं। अब ये दो चीज हो गया, एक हो गया पुष्प, एक हो गया पुष्पस्थ गंध। पुष्प भी पृथ्वी से ही आया है और गंध भी पृथ्वी से ही आया है, इसलिए दोनों में पृथ्वी का अन्वय है। समझे कि नहीं? फूल भी तो पंचभूत पृथ्वी से ही बना है, इसलिए फूल में पृथ्वी का अन्वय है। और जो उसमें गंध है वह भी पृथ्वी से ही आया है, इसलिए गंध में भी पृथ्वी का अन्वय है। लेकिन गंध में जो प्रीति है सुनकर जो आनंद का अनुभव कर रहे हो वो पृथ्वी से नहीं आया है, वो पृथ्वी से नहीं आया। फूल को देखकर जो आनंद की अनुभूति कर रहे हो वो पृथ्वी से नहीं आया है। आनंद पृथ्वी से नहीं आया है, उसमें जो रूप है वो आकाश से आया, वो भी भौतिक है, लेकिन आनंद भौतिक नहीं है। रूप देखकर आनंदित चैतन्य ही होता है, कोई जड़ नहीं होता है। अब वो चेतना तो आत्मा से ही आया हुआ है, तो आनंद भी आत्मा से ही आया हुआ है। तो उसी बात को इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। हे शिष्य, इस तरह तुम विचार करो, देहादि पंचकोशस्था या प्रीति अनुभूयते। अब ये तो एक साधारण व्यक्ति भी अनुभव करता है, समझे कि नहीं? वेदांत न पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आनंदमय कोष में सुख का अनुभव करता है कि नहीं है? वेदांत न पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आनंदमय कोष में सुख का अनुभव करता है। वेदांत न पढ़ा हुआ व्यक्ति भी विज्ञानमय कोष में सुख का अनुभव करता है। कोई नई वस्तु के बारे में उसको जानकारी मिलती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, ये विज्ञानमय कोष की तो सुख का अनुभव है। इसी तरह कोई काम कर लेता है तो वो आनंद का अनुभव कर लेता है, तो ये प्राणमय कोष का धर्म है। अब शरीर आदि स्वस्थ रहता है तो आनंद का अनुभव करता ही है, अज्ञानी भी करता है, भैंस भी करती है, इसके लिए कोई वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर महाराज वेदांत का प्रयोजन क्या है? वेदांत का इतनी प्रयोजन है इन कोसों में जो आनंद की अनुभूति भैंस को हुई है, भैंस वो आनंद ब्रह्म का है ये निश्चय नहीं कर सकती है। इतनी के लिए वेदांत पढ़ना है, कितने के लिए, ताकि तुम निश्चय कर सको। और यदि तुमने कोसों में होने वाले प्रीति को ही ये ब्रह्म आनंद है, ब्रह्म से आया हुआ सुख है, परमात्मा का है, आत्मा का है, आत्मा का सुख ही कोसों में हम इस रूप में अनुभव कर रहे हैं ये निश्चय नहीं कर सके, तो भैंस से हमारी विशेषता क्या रह गई? बोलो, हमारी विशेषता तो इसी बात में है ना, इतनी में है। ये प्रीति आत्मा से आया हुआ है, आत्मा का है, ये आनंद, ये सुख आत्मा का है बस। सा प्रीति आत्मा, और वो आत्मा ही कूटस्थ, कूटस्थ आत्मा का है। कोसों में जो आनंद है वह कूटस्थ आत्मा का है, क्योंकि ये पांच कोस का जो अधिष्ठान है चैतन्य, समझे कि नहीं? कूटस्थ शब्द का अर्थ ही पंचदशीकार विद्यारण्य मुनि जी ने स्पष्ट लिख दिया है, देह द्वय तयाधिष्ठान स्थितम, है ना, पंचकोश स्थूल और सूक्ष्म आदि देह के अधिष्ठान के रूप में जो चैतन्य विद्यमान है वह चैतन्य को कूटस्थ कहते, कूटवत् स्थियति इति कूटस्थ। तो विकार रहित एक स्थिर होकर रहे वो कूटस्थ, जिस अधिष्ठान में ये कोशें स्थित हैं उसी अधिष्ठान का आनंद कोशों में अनुभव में आ रहा है, इसलिए ये आनंद कूटस्थ से आया हुआ है। कूटस्थ मेरा असली स्वरूप है, आभास मेरा असली स्वरूप नहीं, कूटस्थ मेरा असली स्वरूप है। अधिष्ठान कूटस्थ है तभी अंतकरण में कोशों में चित का प्रतिबिंब पड़ा, इसलिए चिदाभास हुआ। अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य है और अधिष्ठान का ही प्रतिबिंब अंतकरण आदि में प्रतिबिंब हुआ है, तब अंतकरण में दिखने वाला कर्ता भोक्ता, बुद्धि से मिलकर कर्ता भोक्ता बनने वाला चैतन्य चिदाभास वो कूटस्थ का ही आभास है। देहादि पंचकोशस्ता या प्रीतिरनुभूयते सा प्रीतिरात्मा कूटस्थ इति वेदांत डिंडिमः। ये बात वेदांत ने नगाड़ा के आवाज के ढोल पीट पीट कर, वेदांत के पूर्वाचार्यों ने ढोल पीट पीट कर लोगों को समझाया है। आप देख लो उसी बात को और आगे विचार कर रहे हैं। एक श्लोक की प्रक्रिया आपको समझ में आ गया तो सब जगह वो आ जाएगा। व्योमादि पंचभूतस्था या सत्ता भासते निर्णाम, सत्ता भासते निर्णाम, सत्ता का अनुभव तो मनुष्य ही कर सकता है, भैंस तो नहीं कर सकती है ना। आकाश में सत्ता है, फूल में सत्ता है, फूल और फूल की सत्ता, फूल और फूल की सत्ता, होना पना, इसको अलग अलग करके निश्चय करने की क्षमता तो निर्णाम मनुष्य में ही है, भैंस तो निर्णय नहीं कर सकती है ना, है? अन्य तो कर नहीं सकते, इसलिए अन्यों का नाम ना लिया, निर्णाम विशेष करके है। मनुष्य इस संज्ञा से जो चैतन्य संगीत हुआ है, इस संज्ञा से, इस नाम से जो चैतन्य प्रतीत हो रहा है, परिचित हो रहा है, वह निर्णाम भासते उन मनुष्यों को जो सत्ता भासते कहां व्योमादि पंचभूतस्था या सत्ता भासते नृणाम पृथ्वी है पृथ्वी में सत्ता की अनुभूति हमको हो रहा है कि नहीं पृथ्वी पृथ्वी हो गई उस पृथ्वी में होनापना सत्ता की अनुभूति हमको हो रहा है कि नहीं भास रहा है कि नहीं इसी तरह जल में जो सत्ता है वो सत्ता की अनुभूति भासना माने अनुभव में होना इसी तरह तेज में सत्ता इसी तरह वायु में सत्ता इसी तरह आकाश में सत्ता आकाश है जो हम कह रहे हैं है पना के अनुभव करके कह रहे हैं कि ऐसे ही कह रहे हैं भासते अनुभव करके कह रहे हैं आकाश है उसके अस्तित्व को हम अनुभव कर रहे हैं यदि अस्तित्व का अनुभव ना करते होते तो हम क्या कहते आकाश नहीं है शब्द प्रयोग करते है ना आकाश की सत्ता का अस्तित्व का अनुभव हम कर रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि आकाश है और यदि सत्ता का अनुभव न करते होते तो हम शब्द क्या प्रयोग करते आकाश नहीं है वायु की सत्ता का हम अनुभव करते हैं इसलिए हम कहते हैं कि वायु है यदि वायु की सत्ता का अनुभव हम न करते होते तो हमको यह कहना पड़ता कि वायु नहीं है तो पांचों भूत में एक चीज का हम अनुभव कर रहे हैं समान रूप से यह निश्चित है कि पृथ्वी वायु माने जल में व्यतिरेक है पृथ्वी जल तेज में व्यतिरेक है पृथ्वी जल तेज वायु में व्यतिरेक है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में व्यतिरेक है लेकिन सत्ता सभी जगह अनस्वीत है एक ही सत्ता सब जगह है पीला फूल लाल फूल में व्यतिरेक है लाल फूल का पीले फूल में व्यतिरेक है लाल फूल पीले फूल का हरे फूल में व्यतिरेक हरे पत्ते में व्यतिरेक है एक परस्पर में एक दूसरा एक दूसरे में नहीं है इसको व्यतिरेक कहते हैं समझे कि नहीं लेकिन अदृश्य रूप में धागा ये सब में अनुस्वीत है सूत्रे मणिगणा युवा गीता में यही तो कहा ये जो धागा है दिख नहीं रहा है फिर भी इस सभी पुष्पों में समान रूप से धागा धागे का अन्वय है अस्तित्व है समझे कि नहीं पीले फूल में जो धागा है वही लाल फूल में है वही हरे पत्ते में है एक ही है इसको कहते हैं धागे का अन्वय और पुष्पों का व्यतिरेक क्योंकि एक फूल में दूसरे फूल का व्यतिरेक है सभी फूलों में धागे का अन्वय है इसी प्रकार के पांचों भूतों में एक भूत दूसरे भूत में व्यतिरेक है लेकिन सभी भूतों में सत्ता अन्वय है धागे के तरह एक ही सत्ता सब जगह विद्यमान है व्योमादि पंचभूतस्था या सत्ता भासते निर्णम सा सत्ता परमं ब्रह्म वो जो सत्ता है वही परब्रह्म है वही सत्ता क्या है परब्रह्म है सत्ता किसी और नहीं है कोई और नहीं है ब्रह्म की ही सत्ता सर्वत्र समान रूप से अनुस्वीत है सा सत्ता परमं ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमः इसी प्रकार से व्योमादि पंचभूतस्था या चित एकानुभूयते श्रुति ने कहा ना సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ యువేద నిహితం గుహాయాం పరమేభ్యోమన్. సత్ చిత్ ఆనంద, సత్ ఘన చిత్ ఘన ఆనంద ఘన్ పరమాత్మ. అవ సత్తా కే రూప మే, చిత్తా కే చీత్ కే రూప మే ఔర్ ఆనంద కే రూప మే పరమాత్మ సర్వత్ర అనుభవ మే ఆ రహా హై. లేకిన్ సత్తా అనుభవ మే ఆ రహా హై ఔర్ హమ్ కహతే హై కి బ్రహ్మ అనుభవ మే నహీ ఆ రహా హై. చిత్ అనుభవ మే ఆ రహా హై ఫిర్ భీ హమ్ కహతే హై బ్రహ్మ అనుభవ మే నహీ ఆ రహా హై. సుఖ అనుభవ మే ఆ రహా హై, ఆనంద అనుభవ మే ఆ రహా హై, ఇస్కే బావజూద్ హమ్ క్యా కహతే హై బ్రహ్మ అనుభవ మే నహీ ఆ రహా హై. యే బ్రహ్మ కి కమజోరీ హై కి అప్ని మూర్ఖత హై, ఇస్సే క్యా సిద్ధ హో రహా హై? బ్రహ్మ కి కమజోరీ హై అనుభవ మే నా ఆనా కి హమారీ మూర్ఖత హై బ్రహ్మ కో అనుభవ నా కర్ పానా, జబకి బ్రహ్మ కా హీ అనుభవ కర్ రహే హై అబ్ ఫిర్ భీ కహ రహే హై క్యా? కా క్యా రహే హై? బ్రహ్మ అనుభవ మే నహీ ఆ రహా హై. తో బ్రహ్మ అనుభవ నహీ ఆ రహా హై తో క్యా అనుభవ మే ఆ రహా హై బోలో నా? జగత్ అనుభవ మే ఆ రహా హై తుమ్ తో యహీ కహోగే నా? జగత్ అనుభవ మే ఆ రహా హై క్యా? వో మూర్ఖతా కి బాత్ కర్తే హో. जो वस्तु अपने स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है वो कह रहे हो कि अनुभव में आ रहा है, कि बंद्या का पुत्र अनुभव में आ रहा है? बोलो, बंद्या का पुत्र अनुभव में आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? बंद्या का पुत्र स्वरूप से अपने स्वतंत्र अस्तित्व से जगत में है ही नहीं, इसलिए वो अनुभव में नहीं आ रहा है. चलो, काग के दांत अनुभव में आया आपको कभी है? काग के दांत तो अनुभव में नहीं आ रहा है ना? किसी को अनुभव में आया तो बोलो कितना बड़ा है, कैसा होता है? नहीं, क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है? काग के दांत का अस्तित्व ही नहीं है. और इसके अलावा सभी वस्तु अनुभव में आ रहा है. ये अनुभव ठीक जैसे बंद्या का पुत्र अस्तित्व में नहीं, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं, इसी तरह माया कल्पित नाम रूप स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है. समझे कि नहीं? माया कल्पित नाम रूप स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं है. इसमें से जो आत्मा के ब्रह्म के सत्ता को तुम हटा दो तो ये कुछ भी नहीं है. आप कहते हो कि कपड़ा अनुभव में आ रहा है, कपड़े का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है. कपड़े का जो अस्तित्व आप अनुभव कर रहे हो, ये कपड़े का अपना अस्तित्व स्वतंत्र नहीं, धागे के अस्तित्व में कपड़े की प्रतीति है. अस्तित्व धागे का है, क्या समझ रहे हैं? अस्तित्व किसका है ये तो समझ में आ गई कि नहीं? कपड़े का जो होनापना है वो होनापना तो धागे के कारण है, धागा है अस्तित्व में. लेकिन हम कह देते हैं धागा अस्तित्व में अनुभव में नहीं आ रहा है, कपड़ा अनुभव में आ रहा है. अरे जो अनुभव में आ रहा है कपड़ा, उसका अस्तित्व तो धागे के चलते अस्तित्व है और धागा अनुभव में नहीं आ रहा है. ठीक यही गलती हम कर किए जा रहे हैं. सारा जगत अनुभव में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्म के अस्तित्व से सत्तावान हुआ जगत, इसमें जो सत्ता है वो ब्रह्म की ही सत्ता है. ये हम निश्चय नहीं कर पा रहे. अनुभव में आना अलग चीज है, निश्चय करना अलग चीज है. समझे कि नहीं। अनुभव में आना अलग चीज है, निश्चय करना अलग चीज है। व्योमादि पंचभूतस्था या चिदेकानुभूयते, पहले सत्ता को कहा, अब चित को कह रहे हैं, चेतना को। एक चित अनुभूयते, और सभी में जो चेतना है वो एक ही है। साचित एव परम ब्रह्म, वो चेतना ही परम ब्रह्म है। अब आपको ये बात सत्ता के बारे में तो समझ में आ गया कि व्योम आदि में सत्ता अनुस्वीत है। ये बात समझना बड़ा कठिन हो गया कि व्योम आदि में चेतना अनुस्वीत है, तो हमारे दिमाग में ये नहीं बैठेगा कि पृथ्वी में चेतना है। हम पृथ्वी को चैतन्य मानते हैं कि जड़ मानते हैं? जड़ अनुस्वीत कर देंगे तो फट से समझ में आएगा, चैतन्य अनुस्वीत है तो आपको समझ में नहीं आएगा। जबकि पृथ्वी में चैतन्य अनुस्वीत न हो तो जो अनुस्वीत चेतना है वही सारी वनस्पतियों में अनुगत है। बोलो, सारे वनस्पतियों में जो चेतना है वो पृथ्वी से आया है, और पृथ्वी में वो चेतना ब्रह्म से आया है। गामा विश्व च भूतानि धारयामि अमोजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा शुभम भूत्वा रसात्मक। बात स्पष्ट है लेकिन निश्चय नहीं कर पा रहे, इतनी समस्या है। साचिदेव परम ब्रह्म इति वेदांत डिंडिमः। व्योमादि पंचभूतस्था या प्रीतिरनुभूयते सा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। व्योमादि पंचभूत में पहले सत्ता का अन्वय बताया, फिर चित का अनुभव बताया, अब आनंद का अनुभव बता रहे हैं। पृथ्वी आदि पांच महाभूतों में आनंदता अनुस्वीत है, प्रीति अनुस्वीत है, अनुगत है। यदि इन पांच भूतों में प्रीति का अनुगत न होता तो पृथ्वी या पृथ्वी जन्य यावत पार्थिव पदार्थ में हमारे कोई आकर्षण न रहता। समझे कि नहीं? ये फूल क्या है? पार्थिव है। फूल को क्या कहेंगे आप? पार्थिव कहेंगे। पार्थिव कहने का अभिप्राय क्या हुआ? पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी जन्य पार्थिव। अब पार्थिव में हमें प्रियता दिख रहा है कि नहीं है? फूलों में हमें प्रियता दिख रहा है कि नहीं? अब फूलों में प्रियता आया कहां से? पृथ्वी से। अब पृथ्वी में ये प्रियता आया कहां से? ब्रह्म से। ये बात तो निश्चय करना ही पड़ेगा ना। हम बार बार यही बात कहते हैं। कपड़े में प्रियता आया कहां से? धागे से। धागे में प्रियता आया कहां से? कपास से। कपास में प्रियता आया कहां से? पृथ्वी से। अब जाओ, पृथ्वी में ये प्रियता आया कहां से? ब्रह्म से। अब आगे परंपरा में जाओ तो फिर जल से, जल आकाश ते वायु से, तेज से, फिर आकाश से, अहंकार से, महतत्व से, माया से, और माया में आया कहां से? तो ब्रह्म से। तो ब्रह्म से आया हुआ प्रीति इस कपड़े में स्पष्ट अनुभव हो रहा है, और वो प्रीति प्रेम ब्रह्म से ही यहां ना आया होता तो कपड़े से कोई प्रेम ना करता। ये बड़ा आसान है, ब्रह्म दर्शन कराओ, ब्रह्म दर्शन कराओ, और इससे अलावा ब्रह्म क्या? कोई किसी को कान पकड़ के लाकर खड़ा करके ये ब्रह्म दर्शन करो, कह के ब्रह्म दर्शन होगा क्या? वो तो होगा ही नहीं।
यही है ब्रह्म दर्शन। इसके अलावा ब्रह्म दर्शन का और कोई फॉर्मूला नहीं। यदि वेदांत डिंडिमा हम घोषणा करते हैं, इसके अलावा कोई ब्रह्म दर्शन कराता है कोई माई का लाल तो वो आए हमारे सामने। लोग कहते हैं कि यहां शक्तिपात कर दिया, यहां दबा दिया, ब्रह्म दर्शन हो गया। अरे भाई, हम ब्रह्म दर्शन करा रहे हैं इतने आसान से, इसके अलावा और क्या ब्रह्म दर्शन है?
व्योमादि पंचभूतस्ता या प्रीतिरनुभूयते स्रा प्रीतिरेव ब्रह्म स्यात् इति वेदांत डिंडिमः। देहादिकोशगा सत्ता या सा व्योमादिभूतगा।
तुम ये बार बार मान रहे हो कि पृथ्वी अलग है, मैं अलग हूं। अरे भाई, पृथ्वी और तुम कैसे अलग हो सकते हो? पृथ्वी देह आदि में जो सत्ता है, वही सत्ता पृथ्वी आदि में है। पृथ्वी का अलग सत्ता, शरीर की अलग सत्ता होती तब तो सत्ता में भेद होता, समझे कि नहीं? सत्ता में तो जो तुम्हारे शरीर में सत्ता है, वही सत्ता पृथ्वी की है। और पृथ्वी में सत्ता न हो, पृथ्वी में सत्ता न हो तो पृथ्वी से बना हुआ शरीर में सत्ता आएगी कहां से? बोलो। पृथ्वी में यदि सत्ता न हो तो उस पृथ्वी से बने हुए तुम्हारे शरीर में सत्ता आए कहां से? आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता। पृथ्वी में सत्ता विद्यमान है, तभी पृथ्वी में विद्यमान सत्ता ही तुम्हारे देह में आ गया। धागे में सत्ता है, इसीलिए धागे की सत्ता ही कपड़े में सत्ता अस्तित्व में आ गया। कपड़ा धागे में ही वो सत्ता न होती तो कपड़े में सत्ता कहां से आता? बोलो। कपास में सत्ता है, इसलिए कपास में रहने वाला सत्ता ही धागे में स्वतः आ गया है, इसलिए हम धागा है कर पा रहे हैं, इसलिए हम कपड़ा है कर पा रहे हैं। कपास में ही सत्ता न होती तो धागे और कपड़े में सत्ता कहां से आता? देहादि कोशगा सत्ता या सा व्योमादिभूतगा माना भावान्न तद्भेद। दोनों की अलग अलग सत्ता है ये कहने में कोई प्रमाण नहीं है। माना भावात है, कोई प्रमाण ही नहीं है, तुम प्रमाण नहीं दे सकते हो। दो सत्ता अलग अलग हैं ये सिद्ध करने के लिए तुम कोई प्रमाण नहीं दे सकते। देने के लिए व्यतिरिक्त प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण तो यही ना होगा, व्यतिरिक्त प्रमाण देना पड़ेगा। पृथ्वी की सत्ता हट गई तो भी शरीर की सत्ता रह जाए तब हम मानेंगे कि दोनों की सत्ता अलग अलग है। संभव है? मान लो कि पृथ्वी की सत्ता हट गया, तब पृथ्वी में जो है पना है वो हट गया तो पृथ्वी क्या होगा? नहीं। और पृथ्वी की सत्ता हट जाए फिर भी तुम्हारे शरीर की सत्ता बना रहे, संभव है? कोई प्रमाण है? अलग अलग सत्ता सिद्ध करने का कोई प्रमाण है? शास्त्र ने अनुमान से, प्रत्यक्ष से, उपमा से, शब्दों से, श्रुति से, युक्ति से कोई प्रमाण दे सकते हो? दे ही नहीं सकते। इसलिए दोनों की सत्ता क्या है? एक ही सत्ता है। देहादि पंचभूतों में जो सत्ता है वही सत्ता पृथ्वी में है, पृथ्वी की जो सत्ता है वही सत्ता देहादि भूतों की है। दोनों की सत्ता की एकता है। माना भावा न तद भेदा, सत्ता में भेद नहीं कर सकते। इसी प्रकार से देहादि कोशगा स्फूर्ति, पूर्ति माने प्रतीति है ना, स्फूर्ति माने प्रतीति, देह की प्रतीति, देह होने का अनुभव, स्फूर्ति, सा फूर्ति व्योमादिभूतगा, और वही स्फूर्ति वही आकाशादि भूतों में भी है। माने आकाशादि अनुभव में आने का कारण है स्फूर्ति, और आकाश में जो स्फूर्ति है वही स्फूर्ति देह में है। पहले आकाशादि भूत के जो अनुभूति है उस अनुभूति को, स्फूर्ति को हटा दो, उसके बाद तुम देह के स्फूर्ति को बनाए रखो, अनुभूति बनाए रखो, संभव नहीं। इसलिए माना भावान न तद भेद, स्फूर्ति को भी तुम अलग नहीं कर सकते, स्फूर्ति को अलग नहीं कर सकते माने चित्त को अलग नहीं कर सकते। देहादि कोशगा प्रीति या सा व्योमादिभूतगा, शरीर आदि में तुम्हारी जो प्रीति है वही प्रीति पृथ्वी आदि पंचमहाभूतों में भी समान रूप से है, और पृथ्वी आदि भूतों में जो प्रीति है वही प्रीति तुम्हारे शरीर आदि में है। ये दो अलग अलग प्रीति हैं, आनंद है, ये तुम किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। व्योमादि भूतों में से जो प्रीति प्रेम आनंदता हटा दोगे फिर उसके बाद तुम्हारा शरीर में आनंद बने ये संभव ही नहीं है। माना भावान्न तद भेद इति वेदांत डिंडिमः, और क्या कहेंगे कल, आज गाड़ी खूब चलाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।